Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 5 and 6, presented by Swami Sri Atmananda Giriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
इसी तरह वायु का चार टुकड़े जो थे उनमें से एक टुकड़ा पृथ्वी को दे दो, एक टुकड़ा जल को दे दो, एक टुकड़ा तेज को दे दो, एक टुकड़ा आकाश को दे दो। इसी तरह तेज के जो चार टुकड़े हैं उनको एक टुकड़ा पृथ्वी को दे दो, दूसरे टुकड़ा जल को दे दो, तीसरा टुकड़ा वायु को दे दो, चौथा टुकड़ा आकाश को दे दो। जल के जो चार टुकड़े हैं पहला टुकड़ा पृथ्वी को दे दो, दूसरा टुकड़ा तेज को दे दो, चौथा टुकड़ा दूसरा टुकड़ा वायु को दे दो, आकाश को दे दो, इसी तरह पृथ्वी का। तो जो चार चार टुकड़े हैं ना वो अपने के अलावा और को दे दो। तो और के लो और को दो, और किसे लो और को दो, इसी का नाम पंजीकरण। और ये पंजीकरण होने के बाद ही आपका स्थूल शरीर, हमारा स्थूल शरीर, परमात्मा का स्थूल शरीर जिसको विराट कहते हो, व्यष्टि और समष्टि स्थूल जो कुछ भी दिख रहा है, इस सभी का नाम है प्रपंच। इन सब का नाम क्या है? प्रपंच। प्रपंच शब्द का अर्थ क्या हुआ? पंचीकरण के बाद प्रतीत होने वाले वस्तुओं को प्रपंच कहते हैं। ये सारा प्रपंच, यस्मात् प्रपंच परिवर्तते अयम, अयम प्रपंच यस्मात् परिवर्तते, अयम माने प्रत्यक्ष जो दिखता हुआ ये प्रपंच है, वह जिससे परिवर्तन हो रहा है यानी जिससे विवर्तित हुआ है, जिसमें प्रतीत हो रहा है। धर्मावहम पापनुदम भगेशम, वो भग का ईश है। भगेशम ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णाम भग इति हिरिना। छह वस्तु को धर्मशास्त्र भग कहता है, ऐश्वर्य को भग कहते हैं, धर्म को भी भग कहते हैं, यश को भी भग कहते हैं, श्री को श्री को भी भग कहते हैं, ज्ञान को भी भग कहते हैं और वैराग्य को भी भग कहते हैं। धर्मशास्त्र के अनुसार ये पांच छह वस्तुओं को भग कहते हैं। और ये छह ही वस्तु जिसमें है भगवान, धनमस्य अस्ति इति धनवान, धन है जिसके पास, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? धनवान। गुण है जिसके पास, उस व्यक्ति को गुणवान। इसी प्रकार से भग है जिस व्यक्ति के पास, उसको भगवान। तो थोड़ा बहुत भग तो हमारे पास भी है, आपके पास भी है ना? थोड़ा ऐश्वर्य तो है, ये ज्यादा ना हो, थोड़ा तो है। नाक फुलाने के लायक ना हो तो नाक बचाने के लायक तो है कि नहीं? भले ही नाक फुलाने के लिए ना हो, मुकेश अंबानी धीरूभाई अंबानी के पास नाक फुलाने के लिए हो सकता है, हमारे पास इतना फुलाने के लिए नहीं है, लेकिन बचाने के लिए तो है ना, जो है उसी से हमारी नाक बची है कि नहीं? थोड़ी बहुत तो संपत्ति है, संपदा ही है। तो इतने में हम भगवान है, भग वाले हो गए कि नहीं बोलो ना। अरे बाबा एक लंगोटी भी है तो भी वो भगवान हो गया, वो लंगोटी वाला है ना, वो उतनी से उसकी इज्जत है, भगवान है। लेकिन भगवान बनने के लिए पूर्ण रूप में, समग्र रूप में छह वस्तु उसके अधीन होनी चाहिए। या समग्र पद सभी छह के साथ जोड़ना पड़ता है। ऐश्वर्य से समग्रस्य, धर्मस्य समग्रस्य, समग्रस्य धर्मस्य, धर्म जिसके पास समग्र रूप में हो, पूरे रूप में। लेकिन हमारे पास धर्म पूरे रूप में नहीं है, थोड़ा बहुत अधर्म भी है, है कि नहीं? थोड़ा बहुत छाती में हाथ रख के देखो तो थोड़ा सा पाप दिखेगा, आपको ख्याल आ जाएगा मैंने जीवन में कोई पाप किया है कि नहीं। थोड़ा सा विचार करने लग जाओगे तो फिर तुम्हारे सामने कितने खड़े हो जाएंगे, वो थोड़े बहुत सब दिखेंगे। इस संसार में निर्दोष कोई भी जीव नहीं हो सकता है, निष्पाप और निर्दोष तो परमात्मा ही है। बाकी ये अलग चीज है कि किसी में ज्यादा होगा किसी में कम होंगे, लेकिन निर्दोष परमात्मा है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस, उस परमात्मा की यश कीर्ति चारों तरफ फैली हुई है। हिंदू जहां तक हैं, जहां भी हैं हिंदू, राम और कृष्ण को जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे? हैं? हिंदू जहां भी होंगे शिव को तो जानते ही होंगे हिंदू लोग, चाहे वो अमेरिका का हिंदू हो चाहे कहीं का भी हिंदू हो। हिंदू होगा तो शिव को जानेगा कि नहीं? शिव की कीर्ति सब जगह फैली है कि नहीं हिंदुओं में? और जितने क्रिश्चियन होंगे उस सब में क्राइस्ट को जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे? और जितने मुसलमान होंगे वो खुदा को जानते ही है, खुदा के नाम को तो जानते हैं ना, भले खुदा को न देखा हो लेकिन खुदा का नाम है। तो वही तो है यश, चारों तरफ यश फैली हुई है। जो भी उसको जानता है वो उसकी गुणगान गाता है, वही तो उसकी यश है। शिव को जानने वाला शिव के गुणगान गाएगा, कृष्ण को जानने वाला कृष्ण के गुणगान गाते हैं, चाहे यहां का हो चाहे जहां का भी हो। श्री कांति उसके पास है, वो पूर्ण रूप में है, समग्र रूप में है, और ज्ञान पूरी रूप में है उसके पास। और ये नहीं समझ लेना कि परमात्मा ये सारे जगत बनाने वाला है और सारे जगत को जानने वाला है, लेकिन जगत से उसका बड़ा लगाव है, बड़ा अटैचमेंट है। यदि तुम्हें ये भ्रांति है तो तुम्हारी अपनी जैसी अटैचमेंट उसकी नहीं है, वैराग्य पूर्ण रूप में उसमें, सारी संपदा उसके पास होते हुए भी पूरे के पूरे उसमें वैराग्य है। इसलिए भगवान शिव के लिए कहा जाता है कि वह सारे ऐश्वर्य के मालिक होते हुए वह शमशान के भूमि के वासी है। यही तो उनकी विशेषता है। और सारे समुद्र मंथन के बाद निकला हुआ विष को कुछ भी न बचे, इस तरह सब पान कर देने के बाद भी वो अमर हैं। परमात्मा वो नहीं है जिसके आश्रय में विरुद्ध धर्म वाले आश्रित न होते हों। यही तो परमात्मा की परमात्मापना है। परस्पर विरुद्ध धर्म वाले दोनों वस्तु उसी में आश्रित हैं, उसी में टिक रहे हैं। सारी संपदा का वह मालिक है, इसके बावजूद भी वह पूर्ण रूप में वैराग्यवान है। और शायद वैराग्यवान न होता तो अपने सारे यादवों के संहार को वह साक्षी भाव से न देखता है ना। प्रवास क्षेत्र में अपने सारे यादव, अपने पुत्र पौत्र बंधु बांधव सब आपस में लड़ते हुए मरते जा रहे हैं, वो आराम से पांव के ऊपर पांव चढ़ाकर पिपल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। भागवत में यही वर्णन है ना, आप लोगों ने सुना है। और उसको आ भी नहीं, वो भी नहीं, किसी को बचाने के लिए निकला नहीं, दौड़ा नहीं, वो आराम से मस्ती से बैठा है और ये प्रतीक्षा कर रहा है क्योंकि तो ब्राह्मण का श्राप कब मूर्त रूप हो और मेरी मृत्यु हो, प्रतीक्षा कर रहा है। सांब के पेट में जो मुसल था वही तो कृष्ण के वंश संहार का कारण बनेगा, यही तो ब्राह्मणों का ऋषियों का श्राप था। और डर के मारे उस मुसल को घिस के समुद्र में फेंक दिया था। वो उसका अंश जो बचा था मछली ने ले लिया, वो अंश बचा था फिर मछली को पकड़कर जो धनुष बाण में लगा रखा था। कृष्ण तो इस सबको जानते हैं ना, और तैयारी में बैठे हैं किस लिए कि वो ब्राह्मण का श्राप मूर्त रूप हो जावे। क्योंकि ब्राह्मण को श्राप देने के लिए प्रेरणा करने वाले भी वही है, कृष्ण ही है। अब मुसल के रूप में प्रतीत होने वाले भी वही कृष्ण है, और तो लोहे के टुकड़ों के रूप में बचने वाले भी वही है, धनुष बाण के शोभा के रूप में तीर के नोक में लगने वाले भी वही है। और शिकारी को लगा कि पेड़ के नीचे, थोड़ा संध्या का समय था, दिन भर तो सारे यादव लोग आपस में मर चुके थे, दिन खत्म हो गया और संध्या का समय था, अब आज भगवान श्री कृष्ण को जाना था, इसलिए संध्या सायं संध्या करने की जरूरत नहीं थी। और मन में जब प्रसन्नता होती है ना, तो पांव के ऊपर पांव चढ़ाते ही अंगूठा हिलने लगता है। आप लोगों ने ख्याल रखा होगा, प्रसन्न व्यक्ति पांव के ऊपर पांव चढ़ाकर बैठा हो तो उसके पांव के जो अंगूठा है वो हिलती रहती है। इसका मतलब इसके ऊपर इस समय ये प्रसन्न चित्त है, इस समय इसके मन में कोई विषाद नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण के हृदय में कोई विषाद नहीं था, इसलिए टांग के ऊपर टांग चढ़ा दी और वो अपने अंगूठे को हिला रहे थे बड़े प्रसन्नता से। चलो, पृथ्वी का भार उतर गया, नहीं तो कुछ दिन ये यादव और रहते तो इतनी कलंक हो जाता, सारे पृथ्वी के लिए कलंक हो जाता, जैसे तालिबान क्या सारे विश्व के लिए आतंकवाद हो रहा है, जैसे माओवादी सारे चिंतित है विश्व के लोग, तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण को भी लग रहा था इनका यदि पूर्ण रूप में संहार न होता तो ये पृथ्वी के लिए कलंक होता। ये आज अच्छा हुआ, सब स्वतः ही लड़ मर गए, नष्ट हो गए, खत्म हो गए। क्या प्रसन्नता थी, इसलिए अंगूठा हिल रहा था तो संध्या के समय में वो शिकारी को भ्रम हो गया, ये निर्णय नहीं कर पाया, निश्चय नहीं कर पाया। उसके भ्रांति हुई कि पेड़ के नीचे कोई मृग है, पेड़ के नीचे कोई मृग खड़ा है और आराम से अपने कान को वो फड़फड़ा रहा है, तो उसी से उसने लक्ष्य वेदन कर दिया, मारा तो कृष्ण के पांव में वो बाण लग गया, लगा तो गया, छोड़ दिया उन्होंने शरीर को, उसको निमित्त बनाया, वही उनके शरीर छोड़ने का, स्वधाम छोड़कर जाने, अपने स्वधाम जाने के लिए ये छोड़ने का एक निमित्त बन गया उनका, चले गए। उनको कोई खिन्नता नहीं है, मुझे लगता है कि उस जब तीर लगा कृष्ण को आहा भी नहीं किया होगा, जैसे हम तो एक छोटी सी छोटा सा कांटा चुभ जाता है तो कहते हैं हम हल्ला करने लग जाते हैं। ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से यश श्रिय ज्ञान वैराग्य योश्चैव षण्णाम भग इति ऋणा, ये छह चीज जिसके पास परिपूर्ण रूप में विद्यमान है, ऐसा जो भग है, ये भग जो है भगवान सगुण साकार है, सगुण निराकार है, क्योंकि ये छह भाग गुण के, प्रकृति के गुण है, गुण के कार्य हैं, और वही उसकी उपाधि है तो वो भगवान हो गए। तो भगवान क्या हुआ, सोपाधिक हो गए, भगवान क्या हो गए, सगुण हो गए, गुणवान हो गए ना ये। तो भगे सम जिसकी बात हम कह रहे हैं वो तो भग का भी ईश्वर है, भगवान नहीं है, भगवान का ईश्वर है। इसलिए वेदांत के दृष्टि से शब्द प्रयोग करते समय आप लोग गलती नहीं कर देना, ब्रह्म को कभी भी भगवान नहीं करना कहना, ब्रह्म को कभी भी ईश्वर नहीं कहना। ईश्वर तो ब्रह्म के स्वरूप से बहुत तुच्छ स्वरूप वाला है ईश्वर, भगवान तो परमात्मा जिसको वेदांति लोग ब्रह्म कहते हैं उसके स्वरूप से तो बहुत तुच्छ स्वरूप वाला है भगवान। लेकिन हम जैसे तुच्छों के सामने वो बहुत महान है, बात समझ गए, हम जैसे तुच्छों के दृष्टि में तो वो बहुत महान है। एक झोपड़पट्टी में रहने वालों के दृष्टि से तो धीरूभाई और अनिल अंबानी बहुत महान है, धनवान है, लेकिन बाबा बिल गेट्स के दृष्टि में वो क्या धनवान है। उनकी संपत्ति, उनकी संपदा का मूल्यांकन करो उसके सामने तो कितनी प्रतिशत में आएगा वो इनकी संपदा। तो भग और उसका भी इस माने वो भी जिसके अधीन है, किसके अधीन है, उसी परब्रह्म परमात्मा के, क्योंकि उसको अपनी सत्ता बनाने के लिए ब्रह्म की सत्ता की आवश्यकता है, उसको अपनी चित्ता बनाने के लिए, ज्ञानता बनाने के लिए ब्रह्म की चित्तता का आवश्यकता है, उसको अपनी क्रियाशील बनाने के लिए ब्रह्म में रह, अपने को खुश रहने के लिए ब्रह्म की आनंदता की आवश्यकता है। भगवान को भी अपनी सत्ता बनाने के लिए ब्रह्म की सत्ता की आवश्यकता है, भगवान को भी अपने को ज्ञानी बने रहने के लिए परमात्मा की चित्तता की आवश्यकता है, भगवान को भी अपने सुखी होने के लिए परमात्मा के ब्रह्म के आनंद की आवश्यकता है। उसी ब्रह्म में विद्यमान आनंद का एक चिन्ह का, एक झिलका लेने के बाद भगवान आनंदित हुआ है एक चिंगारी से। ये वेदांत की दृष्टि से विचार करने पर ही समझ में आएगा, अन्यथा फिर समझ में नहीं आएगा। और आप नहीं तो सामान्य व्यक्ति श्रोता बैठा होगा वो कहेगा ये आत्मानंद ने तो क्या कह दिया, भगवान को भी तुच्छ बना दिया। भगवान तुच्छ है ही, ये वेदांत की दृष्टि से ईश्वर तुच्छ है बाबा, ईश्वर तो उपाधि वाला है। जिस ब्रह्म की बात वेदांत करता है वो निरुपाधिक है, उपाधि वाला होने के कारण वो परिच्छिन्न है, उपाधि रहित तो होने के कारण वो अपरिच्छिन्न है। यस्मात् प्रपंच परिवर्तते यम धर्मावहम पापनुदम भगेशम, धर्म को धर्म बनाए रखने वाला वही परमात्मा है और पाप को नाश करने वाला भी वही है। तो धर्मावहम, जिसकी उपासना करने पर उपासक को धर्म की अभिवृद्धि होती है और जिसकी उपासना करने से उपासक के पाप का क्षय होता है और जिसकी उपासना न करने से पाप की अभिवृद्धि होती है और जिसकी उपासना न करने से धर्म का क्षय होता है। तो धर्मावहम पापन उदम भगेशम ज्ञात्वा आत्मस्थम, ऐसे तत्व को वो रहता कहां है, तो बोले वो मेरा ही स्वरूप है। आत्मा या शब्द से अंतकरण, अंतकरण स्थ, वो जहां मैं बैठा हूं वही वो है, क्योंकि जो मैं हूं वही वो है तत्त्वमसि। उसको खोजने कहां जाओगे, तो वेदांत की दृष्टि क्या है, उसको खोजने के लिए कहां जाना है, बोले जहां मैं बैठा हूं वो वही बैठा है, जो मेरा स्वरूप है वही उसका स्वरूप है और जो उसका स्वरूप है वही मेरा स्वरूप है। वो जहां बैठा है वहीं मैं बैठा हूं, मैं जहां बैठा हूं वहीं वो बैठा है। उसका जो स्वरूप है वही मेरा स्वरूप है, मेरा जो स्वरूप है वही उसका स्वरूप है। वो अलग बैठा और मैं अलग बैठा ऐसा नहीं है, उसका अलग रूप और मेरा अलग रूप नहीं है, वो और मैं, क्योंकि तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, जो वो है वही मैं हूं। इस तरह ज्ञात्वा अनुभूय अमृतम विश्वधाम, विश्वम धामती इति विश्वधाम, विश्व को प्रकाशित करने वाला। धाम शब्द का अर्थ प्रकाश होता है, धाम शब्द का अर्थ प्रकाश, धाम शब्द का अर्थ देश विशेष नहीं है। हाँ। जैसे आप चार धाम यात्रा करते हो कि नहीं, द्वारिका धाम, रामेश्वर धाम, बद्री धाम है, जगन्नाथ धाम, चार धाम, ऐसे देश विशेष धाम के अर्थ, यहां धाम शब्द का अर्थ देश विशेष नहीं, धाम शब्द का अर्थ प्रकाश। ये तो भागवत के मंगलाचरण से स्पष्ट हो जाता है कि धाम शब्द का अर्थ प्रकाश है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, जिस आत्मा ने अपने प्रकाश के द्वारा समस्त अविद्या, अविद्या का मूल जो मूल अविद्या है उसको निरस्त किया हुआ है, कुहकम अंधकार अविद्या को निरस्त करता है। तो वही धाम न विश्वधाम तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम। उसी बात को ज्ञानी लोग अपने हृदय में किस तरह अनुभव करते हैं, तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम, वह ईश्वरों का ईश्वर है, परम महेश्वर है। अब देख लो यहां बड़ी विचित्र बात आती है, ईश्वराणाम ईश्वरम महेश्वरम, तो क्या वेदांत अनेक ईश्वरों को मानता है? वेदांत अनेक ईश्वरवादी नहीं है, जैसे कि आजकल के लोग आरोप लगाते हैं सनातन धर्म अनेक ईश्वरवादी है, कहते हैं ना। लेकिन वेदांत ईश्वर को एक ही मानता है, अनेक ईश्वर नहीं मानते। फिर भी यहां श्रुति ने कह दिया कि तमीश्वराणाम, तो बहुवचन का प्रयोग कर दिया, ईश्वरों में है एक ईश्वर होता तो फिर बहुवचन का प्रयोग न करते, दो ईश्वर होता तो भी संस्कृत में बहुवचन नहीं होता, हिंदी में भले ही दो होने पर बहुवचन हो जाता है, हिंदी भाषा में द्विवचन का प्रयोग नहीं होता है, एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत भाषा में एक वचन द्विवचन बहुवचन, एक को एक वचन में, दुई को दो वचन में, और दो से ज्यादा जो तीन से आगे है सबको बहुवचन में संबोधन किया जाता है। तमीश्वराणाम, अब यहां तीन माने बहुवचन प्रयोग किया, इसका मतलब क्या हुआ? कम से कम तीन होना चाहिए। तो वो कौन है? तो बोले तीन ईश्वर तो है ही है हमारे यहां, बहुल रजसे विश्वोत्पत्तो भवाय नमो नमः। रजोगुण की अधिकता से विश्व सृष्टिकर्ता होने के कारण उसको भव कहा, वही ब्रह्मा है, वो भी ईश्वर है, है? और इसी तरह बहुल तमसे तत्संहारे हराय नमो नमः, प्रबल तमसे तत्संहारे हराय नमः। तमोगुण की अधिकता होने पर वही विश्व सृष्टि का संहार करता होता है, इसलिए वो हरा है रुद्र। और सत्वोद्रिक्तो मृणाय नमो नमः, और रजोगुण माने सत्वगुण की प्रबलता से वह सृष्टि का पालन करता और धारण करता होता है, इसलिए उसको मृण कहते हैं। तो ये जो तीन स्वरूप हैं, सृष्टिकर्ता ब्रह्म, पालनकर्ता विष्णु और संहारकर्ता रुद्र, ये तो गुणवान होने के कारण ये तीन गुणों की विषम अवस्था है। ब्रह्मा जी में तीनों गुण की साम्य अवस्था नहीं है, रजोगुण की अधिकता है, तमसत्व न्यून है, सत्व तम न्यून है। विष्णु में सत्वगुण की अधिकता है, तमोरज न्यून है, और रुद्र में तमोगुण की अधिकता है, सत्वरज न्यून है। ये विषम गुण वाले होने के कारण इनको तीन देवता, तीन ईश्वर के रूप में अलग अलग बताया गया। लेकिन जिसको ईश्वर कहते हैं वो फिर तीन गुण के साम्यावस्था वाला, उपाधि वाला है, ये ध्यान रखना। ब्रह्मा विष्णु रुद्र ये विषम गुण उपाधि वाले हैं, और ईश्वर समगुण उपाधि वाला है। माया में गुण साम्यता है, और जब माया में विद्यमान जो गुण में रजोगुण में विषमता आती है तो ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, सत्वगुण की अधिकता होती है तो विष्णु पालनकर्ता, रजोगुण तमोगुण की अधिकता होती है तो संहारकर्ता रुद्र हो जाते हैं, और तीनों गुण की साम्यावस्था जो उपाधि होता है तो वो ईश्वर तो एक ही है, लेकिन उसी के गुणों के चलते ब्रह्मा विष्णु रुद्र को भी ईश्वर कोटि में रखकर तमीश्वराणाम ब्रह्म विष्णु रुद्राणाम ईश्वरम, उससे भी परे है वो, महेश्वर है वो, ईश्वराणाम ईश्वरम महेश्वरम। ये ईश्वर का भी जो ईश्वर है उसका भी जो ईश्वर महेश्वर, क्योंकि वो भी वो फिर महेश्वर तो मायातीत है। ईश्वर तीन गुण की साम्यावस्था है, उपाधि वाला माया उपाधि वाला, ब्रह्मा रजो उपाधि वाला रजोगुण उपाधि वाला, विष्णु सत्वगुण उपाधि वाला, रुद्र तमोगुण उपाधि वाला, तीनों गुण की साम्य अवस्था वाला ईश्वर गुणातीत वही परमात्मा महेश्वर। और क्या कहेंगे कल देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।
हरिओम। पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम। आज सोमवती अमावस्या।